अहे विद्ये, तू ही मेरा कल्याण कर सकती है। तेरे माध्यम से ही जीवन के दुख कष्टों का उपशम हो सकता है, ऐसा मानकर के जब मैं जाता हूं, ये इमाम ब्रह्म विद्याम उपयंती आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरस्सरा संता। श्रद्धा भक्ति अंतःकरण में हो इस ब्रह्म विद्या के लिए विश्वास हो, तब क्या होता है, तेषाम जन्म जरा रोगादि अनर्थ पूगम, जितने भी अनर्थ हैं समस्त अनर्थों के समूह का नाश करती है। परम वा ब्रह्म गम्यति, उस पर ब्रह्म के पास तक हमें पहुंचा देती है। और क्या करती है, अविद्यादि संसार कारण च अत्यंतम अवसादयति विनाशयति। और यह दो संसार का कारण है अविद्या, उसका समूचा नाश करती है, यह उपनिषद है। तो जैसा मैंने कहा कि एक एक उपनिषद का एक एक अलग अलग दृष्टिकोण, सत्य तो वही है, वहीं तक ये सारे के सारे उपनिषद पहुंचाते हैं, परंतु रास्ता कुछ भिन्न, देखने का तरीका कुछ भिन्न, परंतु मूल जो बातें हैं वे मूल बातें सब में समान हैं, पर शैली में भिन्नता है जिससे रोचकता बनी रहे। एक ही प्रकार की शैली में एक ही बात को लिखा जाए अलग अलग ग्रंथों में, तो आपको कोई रुचि नहीं होगी पढ़ने में, आप कहेंगे एक ही बात लिखी गई है, छोड़ो जी। तो ये जितने उपनिषद आपको मिलते हैं अलग अलग शैली में लिखे हुए, उनका जो अप्रोच है सत्य के प्रति, दृष्टिभंगी है, दृष्टिभंगी में नवीनता है। ये सभी उपनिषद उस सत्य को पाना चाहते हैं, हमें सत्य के पास ले जाना चाहते हैं, परंतु अलग अलग ढंग से। जैसे केलोपनिषद में प्रश्न किया शिष्य ने आकर के गुरु के पास, साक्षात प्रणत हुआ, सेवा की और उसके पास बाद उसने प्रश्न पूछा, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, केनेशिताम वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रम कवु देवो युनक्ति। यह पहला मंत्र है और यहां पर प्रश्न पूछा गया, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, किसकी इच्छा से मन प्रेरित हुआ था, प्रेषित हुआ था, अपने पदार्थों की ओर जाता है, अपने विषयों की ओर जाता है। केनेशिताम वाचमिमां वदन्ति, किसकी प्रेरणा से वाणी बोलती है, किसकी इच्छा से। चक्षुः श्रोत्रम कवुदेवो युनक्ति, आंखों को देखने के लिए और कानों को सुनने के लिए कौन प्रेरित करता है, वह कौन सा देवता है जो प्रेरित करता है। अब यह तो विचित्र सा प्रश्न लगता है, यदि कोई मेरे पास आए और यूं ही पूछे कि अच्छा मन अपने विषयों की ओर क्यों जाता है, किसकी इच्छा से जाता है, आंखें क्यों देखती हैं, कान क्यों सुनते हैं, प्राणों का प्राणन क्यों होता है, तो मैं क्या कहूंगा, इसमें पूछने की क्या बात है, आंखें देखती हैं सो देखती हैं, कान सुनते हैं सो सुनते हैं, अब किसकी प्रेरणा से सुनते हैं। तो मानो मैं इस प्रश्न को साधारण रूप में ग्रहण करता हूं और जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है उसके प्रति मेरी अविज्ञा बुद्धि होती है, ये क्या प्रश्न पूछता है। यदि कोई पूछने का प्रश्न है कि आंखें क्यों देखती हैं, कान क्यों सुनते हैं, मन क्यों विचार करता है, किसकी प्रेरणा से विचार करता है, और किसी प्रश्न पर विचार करने का समय नहीं इसलिए यह प्रश्न पूछ रहे हो, समय जाया कर रहे हो, पर अत्यंत वैज्ञानिक प्रश्न है। ये जो वैज्ञानिक लोग होते हैं ये लोग अजीबोगरीब प्रश्न को लेकर के बैठ जाते हैं और छोड़ते ही नहीं जब तक उत्तर मिलता हो। एक उदाहरण न्यूटन का आप पढ़ते हैं, उनके जीवन में एक दिन बगीचे में बैठे थे, अचानक उनकी नजर सेब के पेड़ पर पड़ी, सेब का फल टूटा नीचे गिरा। कितनी बार न्यूटन ने फलों को टूट करके नीचे गिरते देखा होगा, कितनी बार स्वयं बचपन में उसने फल गिराए होंगे, पर आज अचानक इस क्षण उसके मन में विचार कौन था कि अब फल टूट करके नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। अब मन में वह प्रश्न लेकर के चिंतन कर रहा है, उसने अपने मित्रों से पूछा होगा, अच्छा भाई फल टूट करके नीचे क्यों गिरा। लोगों ने कहा कि बड़े संत की हो, यह भी पूछने का प्रश्न है कि फल टूट करके नीचे क्यों गिरा। अरे फल तो टूट करके नीचे ही गिरता है, ऊपर कहां से जाएगा। तो यह सामान्य कितना भी अजीबो गरीब प्रश्न वह था, कितने ताने सुनने पड़े न्यूटन को, लोगों ने छींटाकशी की, पर न्यूटन ने अपने प्रश्न को नहीं छोड़ा। अजीबो गरीब भले ही प्रश्न हो, न्यूटन लगा ही रहा कि फल टूट करके नीचे क्यों गिरा, और उत्तर मिला गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के रूप में, जिसके संबंध में आप जानते हैं जो विज्ञान का आधार। तो अजीबो गरीब प्रश्न को लेकर के वैज्ञानिक बैठ जाता है। तो उपनिषद में भी ऐसे अजीबो गरीब प्रश्न है। मन में उठा शिष्य के, उसने उस प्रश्न को छोड़ नहीं दिया, भले ही लोगों ने कहा हो कि अजीबो गरीब है, पर वह लेकर के बैठ गया। अंत में उत्तर मिलता है, वह विलक्षण उत्तर, वह अमृत मिलता है, जिस अमृत को हम उपनिषद साहित्य कहते हैं। दूसरे उपनिषद में देखेंगे, कठोपनिषद में, वहां पर भिन्न प्रकार से सत्य की ओर जाया गया है। छोटा सा लड़का नचिकेता यमराज के दरबार में पहुंच जाता है, तीन वरदान प्राप्त होते हैं उसे, और तीसरे वरदान के रूप में अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहता है। पूछता है यमराज से, येयम् प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीति एके नायम अस्तीति चैके एतद् विद्याम् अनुशिष्टस्त्वया वराणाम एष वरस्तृतीय। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद नहीं रहता, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी बचा रहता है, तो आप तो मृत्यु के देवता हैं, आप ही ठीक ठीक बता सकते हैं कि मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है। बस तीसरे वरदान के रूप में मेरे इसी प्रश्न का उत्तर दीजिए, यह एक दूसरा तरीका है सत्य की ओर जाने का। मुंडकोपनिषद में पढ़ेंगे तो वहां पर एक तीसरा तरीका दिखाई देता है। महाशाल महागृहस्थ शौनक जाते हैं अंगिरा ऋषि के पास और प्रश्न करते हैं, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। भगवान मैं किसको जान लूं कि सब कुछ का जानना हो जाए। जानने की बड़ी तीव्र स्पृहा है शौनक के भीतर, और उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन इतना अल्प और ज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत, अल्प जीवन में मनुष्य क्या क्या जान सकता है। परंतु कोई अर्क है क्या ज्ञान का, जिसको जान लेने से जो कुछ भी ज्ञातव्य है सब कुछ जान लिया जाए। यथा एकस्मिन् मृत्पिंडे विज्ञाते सर्वम् मृण्मयम् विज्ञातम् स्यात्। जैसे मिट्टी के एक लोंडे को जान लेने से जो कुछ भी मिट्टी से बना हुआ पदार्थ है उसका तत्व जान लिया जाता है, ऐसे ही कोई ज्ञान का अर्क है क्या जिसको जान लूं कि सब कुछ का जानना हो जाए। यह तीसरा तरीका है। चौथा तरीका है श्वेताश्वतर उपनिषद में, वहां पर कारण पर विचार कर रहे हैं, किम कारणम ब्रह्म, कुतस्म जाता। जीवाम केन त्वचसं प्रतिष्ठाः अधिष्ठिताः केन सुखे तरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था। श्वेताश्वतर यदि ऋषि का नाम हो छद्म या सही, तो उन्होंने अपने घर में ब्रह्म गोष्ठी का आयोजन किया। प्राचीन युग में अन्य गोष्ठियों के समान ब्रह्म गोष्ठी का भी आयोजन होता था, जैसे आजकल विज्ञान गोष्ठी, साहित्य गोष्ठी, इतिहास गोष्ठी, तो इसी प्रकार ब्रह्म गोष्ठी, जहां पर ब्रह्म के संबंध में चिंतन चलता था। यह ब्रह्म क्या है? ब्रह्म धातु से निकला शब्द। ब्रह्म का मतलब होता है फैलना, ब्रह्म का मतलब है फैलाव, ऐसा फैलाव, ऐसा एक्सपांस जिससे अधिक फैलाव की कल्पना ही न हो। तो ब्रह्म का मतलब जहां तक आंखें जाएं, जहां तक मन जाए, वह सब कुछ ब्रह्म ही है। उस फैलाव से अधिक की कल्पना तो होगी ही नहीं। तो इस संसार का कारण क्या है? क्या यह फैलाव देश के अर्थ में और मन की दृष्टि से काल के अर्थ में? आंखों के द्वारा देश दिखाई देता है और काल की जो कल्पना है वह मन के द्वारा होती है। मन काल में विचरण करता है और यह जो हमारी देह है वह देश में विचरण करती है। तो यह देश और काल, तो वहां पर सबका स्वागत करते हैं जितने भी आए हुए हैं। ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म के जानने वाले, ब्रह्मविद, तो उन सब से स्वागत करने के पश्चात कहते हैं कि ब्रह्मर्षियों, ब्रह्मविद लोगों, आपको मैंने बुलाया है इस ब्रह्म गोष्ठी के लिए। तो ब्रह्म गोष्ठी में चिंतन करने के लिए ये विषय है, ये प्रश्न है, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता, इस संसार का कारण क्या है? या यह भी अर्थ हो सकता है कि यह जो ब्रह्म है, फैलाव है, जो देश दिखाई देता है अनंत, उसका कारण क्या है? किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता, हम लोग कहां से पैदा हुए हैं? जीवाम केन, हम जीवित हैं तो किसके द्वारा जीवित हैं? क्वचसम प्रतिष्ठा, हमारी प्रतिष्ठा कहां है, हमारा आधार कौन सा है? यह अधिष्ठिता केन सुखे तरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था। यह जो जीवन की नदी बह रही है, सुख और दुख दो कूलों को, दो किनारों को छूती हुई, इसके बहने का क्या प्रयोजन है? ब्रह्मविद लोग, आप लोग अपनी अपनी दृष्टि से इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह पहला मंत्र है श्वेताश्वतर उपनिषद का और फिर उसके पश्चात उत्तर दिए गए हैं। तो सत्य पाने का यह भी एक रास्ता है। प्रश्नोपनिषद में ऐसे ही प्रश्न किए जाते हैं आकर के। तो मैं कह रहा था कि यह जो उपनिषद साहित्य है, इसमें अलग अलग विधि है उस सत्य को जानने की। यहां पर एक विशेष प्रकार की विधि है। तो पहले हर एक उपनिषद में एक शांति पाठ होता है। शांति पाठ होता है मन को अनुकूल बनाने के लिए उस विद्या के। जैसे हम शांति पाठ करते हैं, इसका मतलब होता है कि जो उस मंत्र में अर्थ है, उस अर्थ का चिंतन करने से हमारी इंद्रियां शांत हो जाएं, मन की लहरियां शांत हो जाएं, ताकि प्रतिभात हो भीतर में उस सत्य का। जब मन शांत होता है तो इस शांत मन में उस विद्या की झलक स्पष्ट पड़ती है, प्रेरणा तीव्र होती है और मन शांत और एकाग्र होने से पैना होता है और पैना होने से फिर अपनी परतों के भीतर में घुसता है, अपनी परतों को छेदता है। जब मन पैना हो जाता है तो अपने भीतर घुसने की सामर्थ्य प्राप्त करता है। जब तक मन चंचल है, आज जैसे हमारा मन चंचल है, तो भीतर की कौन कहे, बाहर ही नहीं टिकता है। आप देखेंगे किसी विषय में मैं मन को लगा करके रखना चाहूं, मन भाग जाता है, उसमें कहीं जाकर के केंद्रित होता नहीं है। पर जहां भी मन केंद्रित हो, वहां आप देखेंगे कि उसका सार निकाल लेता है, यदि मेरा मन व्यवसाय में केंद्रित होता है तो व्यवसाय के जो सूक्ष्म सूत्र हैं वे मेरे हाथ लग जाते हैं। यदि मेरा मन अन्य किसी विद्या में केंद्रित होता है, धन उपार्जन के साधनों में केंद्रित होता है, तो जितना निविष्ट वह होगा तो धन उपार्जन के साधन उतने ही मेरे सामने खुल जाते हैं। यदि खगोल शास्त्र में मेरा मन केंद्रित होता है तो मानो उसके सारे रहस्य मुझे मालूम पड़ने लगते हैं। यह विलक्षण मन है। मन को एकाग्र करके आप जिसका ज्ञान प्राप्त करना चाहें वह पा सकते हैं, लौकिकी विद्या में, किसी सामान्य विद्या में, सांसारिक विद्या में यदि एकाग्र करें तो यह संसार की विद्या अधिगत होगी, और यदि आप अन्य किसी विद्या में इसे एकाग्र करें तो वह विद्या आपके हाथ लगेगी। जिसका मन चंचल है, स्थिर नहीं बैठता है, न तो व्यापार में बैठता है, न तो संसार में बैठता है, न तो कहीं अध्यात्म शास्त्र में बैठता है, ऐसा व्यक्ति सफल नहीं होता है। आप यह देखेंगे कि भौतिक सफलता प्राप्त करने के लिए भी मन की एकाग्रता चाहिए। तो यहां पर अध्यात्म का सूत्र दिया गया, साधना का सूत्र शांति पाठ में। यह जो उपनिषद है सामवेद के अंतर्गत आता है। तलवकार ब्राह्मण है सामवेद, उसमें यह उपनिषद आता है। है तो छोटा सा परंतु ईशावास्योपनिषद से बड़ा है, और कथा के माध्यम से पहले तो तत्व का विवेचन है, और कथा के माध्यम से यह कहा है कि वही अहंकार, जिसकी बात मैंने पहले कही थी, इसमें मुख्य जो ध्वनि आती है अहंकार का नाश करो, अहंकार का नाश करो। अहंकार रहने से सामने साक्षात ब्रह्म खड़ा है यक्ष के रूप में, समझ में नहीं आता कौन है। यह यहां कहा है, इन देवताओं के मन में अहंकार था, जिस तत्व को वे पाना चाहते थे, जिसके दर्शन करना चाहते थे, वह सामने यक्ष का रूप धारण करके खड़ा है, फिर भी नहीं पहचान पा रहे। अहंकार का पर्दा पहचानने नहीं देता है। यदि सामने भगवान भी आ जाए, अहंकार का पर्दा हमें देखने नहीं देता है भगवान को। तो यहां यह विशिष्ट हम कहेंगे इसका विवेचन करने का तरीका। तो शांति पाठ में कहा गया है, ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रम अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम औपनिषदम माहं ब्रह्म निराकुर्याम। मामा ब्रह्म निराकरो, अनिराकरणम अस्तु अनिराकरणम मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति ही शांति ही शांति, यह कहा गया। क्या मतलब है? आप्यायन्तु ममांगानि, ओम से ईश्वर के नाम से मानो सब शुरू होता है, प्रभु के नाम का स्मरण। ओम बड़ा सार्थक है, इसका विवेचन एक बार हम कर चुके हैं, विवेचन करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा या ओम वह स्फोट ब्रह्म, वह ईश्वर का प्रतीक प्रणव ओंकार, तस्य वाचकः प्रणवः। ईश्वर का वाचक क्या है? उस परम सत्य का वाचक है या ओंकार। तो आप्यायन्तु ममांगानि, यह जो प्रार्थना कर रहे हैं दोनों मिलकर के, गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के, मेरे अंग पुष्ट हो। पुष्ट हो किसके लिए? संसार के भोगों का भोग करने के लिए नहीं, बल्कि साधना करने के लिए। साधना के लिए भी शरीर पुष्ट हो, अंग पुष्ट हो, नहीं तो साधना कहां बनती है? यदि रोग जर्जरित हमारी देह हो, साधना में मन नहीं लगता है। इसलिए कहते हैं मेरे अंग पुष्ट हो, इसलिए कि मैं उस सत्य को पाने का उपाय करना चाहता हूं, साधना करना चाहता हूं। वाक प्राणश्चक्षुः श्रोत्रम अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि, वाणी प्राण का जो स्पंदन हो रहा है, वह आंखें कान बल और संपूर्ण इंद्रियां, बल का मतलब तेज दृढ़ता, मन की दृढ़ता मनोबल, मेरा मनोबल पुष्ट हो। मनोबल यदि पुष्ट न हो तो साधना में फिर हम बढ़ नहीं पाते हैं। थोड़ा सा कुछ व्यवधान आया कि हम लड़खड़ा जाते हैं, इच्छा नहीं होती है आगे बढ़ने की, क्रम टूट जाता है। तो कहा गया कि मनोबल मेरा बढ़े और ये सब पुष्ट हो। और क्या हो? सर्वम ब्रह्म उपनिषदम, ये सब कुछ वह औपनिषद ब्रह्म है। औपनिषद ब्रह्म है का तात्पर्य जो ब्रह्म जो सत्य उपनिषद की प्रणाली से प्राप्त होता है। उपनिषद शास्त्र माने उपनिषद की प्रणाली से मतलब गुरु और शिष्य की परंपरा से। गुरु के पास शिष्य जाता है, विनीत होकर के प्रार्थना करता है ब्रह्म विद्या प्रदान करने के लिए, तो कहता है कि यह सब जो कुछ भी है उपनिषद के द्वारा वेद्य ब्रह्म है। और फिर माहम ब्रह्म निराकुर्याम, मैं ब्रह्म की अवहेलना न करूं, सत्य की अवहेलना न करूं, और मामा ब्रह्म निराकरो, यह सत्य भी मेरी अवहेलना न करे। मानो मैं भी सत्य की अवहेलना न करूं और सत्य मेरी भी अवहेलना न करे, यह प्रार्थना। वह सत्य मुझ पर कृपा करे, यदि कभी मुझसे गफलत भी होती है, मैं प्रमाद भी कर बैठता हूं, तो वह सत्य मुझ पर कृपा करे। पर वह मुझ पर कभी माने मेरा किसी भी प्रकार से तिरस्कार न करे, मेरी ओर से त्रुटि हो जाए, पर सत्य कभी मुझे तिरस्कृत न करे, यह यहां पर प्रार्थना। अनिराकरणम अस्तु, अनिराकरणम में अस्तु, अनिराकरण हो परस्पर में हमारा, हम एक दूसरे का आलंबन लेकर के आगे बढ़ चले। कहते हैं तदात्मनि निरते ये उपनिषद सुधर्माः ते मयि संतु ते मयि संतु। उपनिषदों में जो धर्म हैं, जिनकी बात कही गई है, जिन धर्मों के सहारे अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाता है, वे सारे के सारे धर्म मुझ में हों, मेरे भीतर में हों, आ जाएं वे, ऐसा कहा गया है। और त्रिविध त्रिताप की शांति की प्रार्थना की गई है। यह यहां से शुरू होता है। और इसके बाद यह कहा गया यहां पर केनोपनिषद की महत्ता बताई गई एक प्रकार भगवत पूज्यपाद के द्वारा। आप पढ़ते हैं तो दो भाष्य मिलेंगे आपको, एक तो पद भाष्य है, जैसे हर उपनिषद उनका पद भाष्य है, और उसके साथ साथ उसका वाक्य भाष्य भी है। यह विलक्षणता है इस उपनिषद की। केवल इसी में दो भाष्य आद्य शंकराचार्य के द्वारा है। तो पद का मतलब कि जो श्लोकों के पद हैं, शब्द हैं, उनका अर्थ, उनका भाष्य, उनका विवेचन तो है ही, और फिर स्वतंत्र रूप से वाक्य भाष्य भी है। मानो वहां पर पद के साथ अधिक संबंध नहीं है, पर क्या कथ्य है, क्या कहा गया है, इसको लेकर के उन्होंने स्वतंत्र और तर्क के आधार पर जो प्रणाली है खंडन मंडन की, पूर्व पक्ष की, उत्तर पक्ष की, शंकराचार्य पूर्व पक्ष उठाएंगे, प्रश्न उठाएंगे दर्शन के क्षेत्र में, और फिर उसका खंडन करेंगे और अपने मत का पोषण करेंगे। यह जो प्रणाली है, वाक्य भाष्य के माध्यम से उस प्रणाली का दर्शन कराते हैं। और पद भाष्य जैसा हर उपनिषद के साथ है, तो पद भाष्य में मानो तत्व का बोध कराते हैं, जो शब्द हैं उनका अर्थ बोध कराते हैं। तो दो भाष्य रचे हैं केवल इसी उपनिषद के। इस दृष्टि से भी केनोपनिषद का महत्व अपने आप में बहुत अधिक है, यह कहा जा सकता है। तो प्रथम मंत्र इसका उच्चारण कर देते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेशिताम वाचमिमाम वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रम कवु देयो युनक्ति। यहां यही मालूम पड़ता है कि शिष्य बैठा है, ऐसा लिखा नहीं है, पर लगता है कि शिष्य आया है और गुरु के समक्ष प्रणत होकर के प्रश्न कर रहा है कि भगवान मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि यह जो मन अपने विषयों की ओर जाता है तो किसकी इच्छा से जाता है? कोई इच्छा करता है, कोई उसे भेजता है, पठाता है, तभी न जाता है। यह जो प्राण है प्रथम, किसकी प्रेरणा से प्रथम प्राण स्पंदित होते हैं? देखता है अपने भीतर प्राणों का स्पंदन, यह धौंकनी क्यों चलती है और बंद हो जाती है? एक दिन मनुष्य मृत्यु के करालगाल में समा जाता है, तो धौंकनी जो चल रही है तो किसकी इच्छा से चल रही है? इसके पीछे प्रेरणा किसकी है? क्योंकि मैं कुछ भी काम करता हूं तो मेरे भीतर इच्छा होती है, तब न काम करता हूं। परंतु धौंकनी चलने लगी, आंखें देखने लगी, या तो जब मैंने इच्छा नहीं की थी तब भी आंखें देख रही हैं। जब मैं छोटा सा शिशु था तब मैं कोई देखने की इच्छा थोड़ी ही कर रहा था। आंखें खुली तो दिखाई देता है, मन इधर उधर जाता है। तो ऐसे समय का विचार करके वह प्रश्न करता है कि कौन मन को भेजता है पदार्थों में, विषयों में विचार करने के लिए? किसकी प्रेरणा से प्राण स्पंदित होते हैं? वाणी बोलती है तो किसकी इच्छा से? कान और आंखें अपना अपना कार्य करती हैं तो किसकी प्रेरणा से करती हैं? यह प्रश्न, और इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया समूचे उपनिषद में, उस उत्तर को अगले तीन दिन आपके समक्ष विचार करेंगे। आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत्।